आज का लेसन भी पीछे से कंटिन्यूएशन है। देखिए पहले किताब की बात हो रही है तो अब इस आयत की। لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم, कुफर किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा बेशक अल्लाह वो मसीह इब्ने मरियम है। यानी अल्लाह ताला अस्तगफिरुल्लाह नऊजु बिल्लाह कि वो मसीह की फॉर्म में दुनिया में आ गया। अल्लाह ने जिस्म एक, यानी ये जिस्म इंसान वाला है लेकिन उसके अंदर अल्लाह, ये जो मसीह है इसकी शक्ल में। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे लोगों ने कुफर किया, ये कलमाए कुफर है। जबकि मसीह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था ये बता दिया गया यहाँ पे। वकाल अल मसीह, जबकि मसीह अलैहिस्सलाम ने कहा था या बनी इसराइल, या बनी इसराइल, क्यों उन्होंने या बनी इसराइल क्यों कहा, या यूं ना क्यों कहा? इसलिए कि वो सिर्फ बनी इसराइल के लिए रसूल बना के भेजे गए थे, सब इंसानियत के लिए नहीं। आज तो ये उठ के चल पड़े ना सारी दुनिया को पैगाम देने, इनके नबी ने इनको कहा था कि पूरी दुनिया में मेरा पैगाम लेके घूमना, ईसाइयत की तरफ बुलाना। उन्होंने कहा था बनी इसराइल की तरफ ही भेजा गया। तो ए बनी इसराइल, उबदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, इबादत करो अल्लाह की जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। यानी उन्होंने खुद फरमाया अपनी कौम को। रब का माना क्या होता है? रब जो मालिक है, पालने वाला है। देखिए हम दुआ करते ना, रब्बे रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कमा रब्बा यानी सगीरा का मतलब क्या? अल्लाह हम कहते हैं ऐ हमारे रब, हमारे वालदैन पे रहम फरमा जैसे कि उन्होंने रब्बा यानी मेरी, मुझे पाला पोसा, मेरी तरबियत की। सगीरा जब मैं छोटी थी, ठीक है, जब मैं बेबस थी, जब मैं अपनी कोई जरूरत पूरी नहीं कर सकती थी, तो वो मेरी हर जरूरत पूरी करते थे, मुझे पालते थे, हर मरहले में वो मेरे साथ थे, उन्होंने मेरा ख्याल किया, उन्होंने मेरे पर मेहरबानी की, वो मेरी परवरिश की। वो सारा कुछ ना रब में आता है। तो अल्लाह ताला तो रब है सारी कायनात का, कि पूरी कायनात को पालना, इसको नशो नुमा देना, इसको बढ़ोती देना, हर मरहले में उसकी जरूरतें पूरी करना, वो पालने वाला होता है। सोचो एक जर्रे से लेकर एक सूरज और बड़ी बड़ी कहकशाओं तक, यूनिवर्सिस तक, गैलेक्सीज तक, ये सारा इसको अल्लाह ताला पाल रहा है, चला रहा है, बना रहा है, बढ़ा रहा है, इसकी जरूरतें पूरी कर रहा है। ये है रब्बुल आलमीन का खासा। वो कहते हैं मैं तो खुद पाला जा रहा हूं। रब्बी का मतलब क्या? मैं तो खुद पाला जा रहा हूं। वो ये नहीं कहते कि मैं रब हूं, वो कहते हैं मेरा पालने वाला एक रब है, मैं कैसे उसका हिस्सा हो सकता हूं जबकि वो तो खुद मुझे पाल रहा है। ठीक है, और वो रब्बकुम, और तुम्हें भी वो ही पालने वाला है। तो उन्होंने साफ तौर पे इन अल्फाज में कह दिया कि मैं खुद खुदा नहीं हूं, बल्कि जब वो पैदा हुए तो आप सोचेंगे जो उनकी पहली बात जो उन्होंने की, आपको पता है कि ईसा अलैहिस्सलाम का मौजा है कि वो यानी माँ की गोद में बोलने हैं, तो उनका पहला कलमा जो दुनिया में आने के बाद था वो था इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसका गुलाम हूँ। उन्होंने नहीं कहा मैं अल्लाह हूँ जब वो बेबी थे, बेबी न्यू बॉर्न बेबी थे। मेरा और तुम्हारा रब सबका अल्लाह है। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने ये बात अपने मुंह से फरमाई है, फिर कैसे ये उनको कह देते हैं कि इनकार्नेट किया है गॉड ने, उसने इसमें हलूल किया है ईसा अलैहिस्सलाम ने, और कयामत के दिन भी जब वो आएंगे तो वो यही कहेंगे। तो वो तो ये तालीम दे के गए। आज इनके जो लोग हैं वो क्या तालीम दे रहे हैं लोगों को कि वो खुदा है, क्योंकि यही इनका एक फिरका तो यही कहता है। और उन्होंने सिर्फ यही नहीं कहा, उन्होंने कहा इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह। ये आयतें हैं जो आपको क्रिश्चियंस को दिखानी चाहिए, बतानी चाहिए। अब आप कहें हाय हम उनको कहेंगे वो तो ऑफेंड ना हो जाएंगे, किसने तो लिखा था कि ये कुफर है, तो ऑफेंड होते हैं। कुरान कह रहा है वो कुफर है, तो अल्लाह ताला तो हक बात कहता है। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह, अब इसको कहने से भी अब हम डर गए, जो भी अल्लाह के साथ शेयर करेगा नहीं ये कैसे उनको बताएं, क्योंकि आगे तो लिखा हुआ फकत हराम अल्लाह वाले जन्नत, हराम है उसके लिए पर जन्नत, तो वो तो जन्नत में जाने के लिए तैयार बैठे हैं, वो तो कहते हैं कि हमारे सिंह भी उन्होंने ले लिए और हम जन्नत में जाएंगे सीधे चले जाएंगे, क्योंकि वो तो सिंह ले चुके हैं, हम जो मर्जी करें दुनिया। जबकि वो क्या कह के गए कि मई यू शिरक बिल्ला, जो शिरक करेगा अल्लाह के साथ किसी किस्म का भी शिरक, अल्लाह ताला के बराबर किसी को ठहरा दे उसकी इबादत में शिरक करे, अल्लाह ताला के जो जो सिर्फ अल्लाह के लायक हैं सिफात उनके अंदर किसी और को शरीक कर दे, जो काम सिर्फ अल्लाह के लिए किए जाते हैं उनमें किसी और को शरीक कर दे, जैसे मिसाल के तौर पे सजदा है, नमाज है, दुआ करना है, ये है वो रिचुअल जो इबादत की है, इबादत में शामिल है, सजदा करना भी इबादत है, नमाज इबादत है, दुआ करना इबादत है, किसी के आगे झुक जाना ऐसी ये इबादत है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए, इसमें किसी को शरीक नहीं कर सकते। तो मैं युशरिक बिल्ला, जो शिरक करेगा अल्लाह के साथ, हराम कर दी गई उसके ऊपर जन्नत, हराम है, हराम जो चीज होती है सोच लें आपके फिर क्या है, हराम। ऐसे हमारे लोग ना ये बात खुद समझें और सोचें, जब कहते हैं नहीं वो उनका अखलाक बहुत अच्छा है, उनकी डीलिंग बड़ी अच्छी है, उनकी ये बड़ी अच्छी, लेकिन जितनी मर्जी अच्छी हो जाए आप उनकी एडवोकेट ना बने, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि मेरे नबी ईसा ने दुनिया में बता दिया था कि शिर्क जो भी करेगा अल्लाह के साथ ये वो गुनाह है, अल्लाह ने माफ नहीं करना, नहीं करना माफ, इसको करते हुए अगर कोई मर गया, हाँ दुनिया में अगर किसी ने तौबा कर ली जो आगे बात आएगी उसका माफ हो सकता है, लेकिन अगर कोई शिर्क करता हुआ दुनिया से चला गया, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो यहूदी है, चाहे वो अपने आप को मुसलमान कहता हो, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो कोई भी है, जो भी शरीक करेगा अल्लाह के साथ उसके लिए जन्नत हराम है, और उसका ठिकाना दूसरा क्या है, दूसरा और कोई ठिकाना असल में है नहीं, वरना जन्नत ना मिली चलो कोई और जगह मिल जाएगी, नहीं रहते जन्नत के अंदर, वो तो बहुत लग्जरी है, कोई कोई मिडिल क्लास जैसे होता है वो मिडिल क्लास जगह पे रह लेते हैं, नहीं वहां पे सिर्फ जन्नत है या जहन्नम है, दैट्स इट, इंसान का ठिकाना इन दो में से कोई एक ही होगा, फिर दूसरा ठिकाना तो आग है, तो ये कितनी खौफनाक बात है, और ये पता चलता है कि शिर्क कितनी बुरी चीज है और अल्लाह को कितना नापसंद है। इसीलिए प्यारी बहनों, अगर किसी चीज के अंदर जरा सा भी शिर्क का आपको शक भी पड़ जाए ना कि इसमें शिर्क का शाइबा कोई जरा सा भी, कि ये अशआर ऐसे हैं जिसमें शिर्क की कोई बात हो सकती है, ये नात ऐसी है जिसमें शिर्क की कोई बात हो सकती है, ये बात ऐसी है जिसमें शिर्क की कोई बात हो सकती है, हम उसको नापसंद करें, हम उसको उसको ना वो अल्फाज भी ना बोले, बेशक हमारी नियत नहीं भी होती लेकिन ऐसी चीजों से भी बचे। देखिए ना जैसे वो कहा गया ना वला तकरबुल जिना, जिना के करीब भी ना जाओ, अब वो यानी उस रास्ते पे भी ना जाओ, इसको कहते हैं सद्दे जराए, जो इस्लाम ने किया ना सद्दे जराए, यानी वो रास्ते में बंद कर दिए जिन साथ, आप कहते हैं तो क्या हो गया अगर मैंने तस्वीर अपनी अपने कमरे में बड़ी करा के अपनी दीवार पे लगाई तो क्या हो गया, इससे क्या फर्क पड़ता है, अगर मैंने ये स्कल्पचर ये बड़ा ही खूबसूरत है, ये मतलब स्टैचू बड़ा ही मुझे पसंद है, बड़ा ही खूबसूरत बना, हम कोई पूजा तो नहीं करते, हमने तो वैसे ही रखा हुआ। देखिए इसीलिए इस्लाम ने इसका रास्ता भी बंद किया, क्योंकि ये तस्वीरें ये जो स्टैचूज हैं इनसे शिर्क के दरवाजे खुलते हैं, ऐसी बातें करना इनसे शिर्क के दरवाजे खुलते हैं, आज आपकी नियत ना होगी कल आपको क्या पता आपके बच्चे क्या उसको सोचे, परसों आपको क्या पता कोई और इसको क्या समझ ले, तो इसलिए शिर्क की छोटी सी चीज जिससे जरा भी कहीं कहीं डाउट भी आए ना आपके जहन के अंदर कि ये शिर्क हो सकता है उससे भी बचे, क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज है। आप क्यों नहीं करते कि आप कहीं तार जा रही हो तो आप नंगी तारों को जाकर हाथ लगा दो, आप कहते क्या पता इसके अंदर करंट हो, क्या पता, अब आपको श्योर नहीं है लेकिन आप कहते क्या पता हो, तो आप उस चीज से भी बचते हैं जहां आपको हलाकत नजर आती है, तो शिर्क तो बहुत बड़ी तबाही है, ये तो हलाकत है, इसके अंदर तो कोई डाउट ही नहीं, ये तो गारंटीड जहन्नुम है, फिर फिर आप कैसे कर सकते हैं कि ऐसी चीजों के करीब चले जाएं। चलो मैं देखती तो हूँ कि अच्छा कौन सा हम नियत कर रहे हैं, कौन सा हम ये कह रहे हैं, पर छोड़ो नियत को, आप उन चीजों को ही छोड़ दो, ऐसे कामों को ही छोड़ दो। जब लोगों को कहते हैं कि भाई आप ना जाके वहां पे दुआएं करें, इन मज़ारों पे जाके ना वहां पे मांगे, वो कहते हम तो अल्लाह से ही मांग रहे हैं। हाँ आप अल्लाह से मांग रहे होंगे, लेकिन जिन चीजों से शिर्क के दरवाजे खुलते हैं वो चीजें बंद कर दो, वो चीजें सही नहीं है। क्या आप देख नहीं रहे कि इससे गारंटी जहन्नुम है? फिर क्या इससे बचना नहीं चाहोगे? वमा लिल ज़ालिमीना मिन अंसार, और जालिमों का कोई मददगार नहीं। जालिम कौन होते हैं? जालिम वो होता है जो हकदार को उसका हक ना दे, वो भी जालिम है जो अल्लाह को उसका हक नहीं देता, क्योंकि अल्लाह का हक है कि सिर्फ उसकी इबादत की जाए और किसी को उसके साथ शरीक ना किया। वो जालिम है, सबसे बड़ा दुनिया का जालिम वो इंसान है। और हम कहते हैं ये जन्नत में क्यों नहीं जाएगा, वो शिर्क करता है इतना ही काफी है, वो इतना बड़ा जालिम है कि अल्लाह ताला ने फरमाया ये शिर्क जुल्मुन अजीम है, बड़ा जुल्म है। वो तो इतना बड़ा जालिम है, तुम कहते जन्नत में क्यों नहीं जाएगा? वो तो जहन्नुम से नहीं निकल सकता, जन्नत तो बाद की बात है, वो तो जहन्नुम से भी नहीं निकलेगा कभी भी, जो शिर्क करते हुए मर गया। और जो रसूल को उसका हक ना दे, रसूल का हक क्या है कि जब आखिरी रसूल आ गए हैं तो उनको माना जाए, जो उसको उनको उनका हक ना दे वो भी जालिम। तो जालिमों का कोई मददगार नहीं। और फिर अगला इनका अकीदा भी खोला गया, सिर्फ इनका ये अकीदा नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम, एक एक फिरके का तो ये अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम ही खुदा है। दूसरे ने क्या किया, इनकी भी सुन ले, लकद कफर अल्लज़ीना कालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, उन्होंने भी कुफर किया जिन लोगों ने कहा अल्लाह तो तीसरा है तीन में से। तीसरा तीन में से कौन? ट्रिनिटी का जो अकीदा है, इनमें दो चीजें, एक तो एक ग्रोह इनका कहता है कि अल्लाह, ईसा अलैहि सलाम और हजरत मरियम, ये तीनों खुदा हैं, तीन में एक, एक में तीन। इसको मैंने क्रिश्चियन से पूछा भी कि भाई आप इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकती हैं, उसने कहा कि ये नहीं मुझे पता कि कैसे, बस इसी तरह हमें बताएंगे। दूसरा, दूसरे ग्रोह का क्या है, अल्लाह ईसा अलैहि सलाम और तीसरा रूहुल कुदुस। बाज कहते हैं रूहुल कुदुस जिब्राइल अलैहि सलाम है, बाज कहते हैं नहीं ये रूहुल कुदुस कोई और ही चीज है। तो अब देखिए इन्होंने बनाया क्या, तीन में तीसरा वो है अल्लाह। मैंने आपको बताया ना ये तीन, और इनमें दोनों जो ग्रोह हैं वो एक अल्लाह को समझते हैं और बाकी किसी और को, तो वो तो तीन में तीसरा है, यानी बाकी भी है। तो एक एक इन्होंने ये ट्रायंगल सा बना दिया और कहा कि ये सारी खुदा है। अच्छा ये कैसे शुरू हुआ था? एक्चुअली एक ग्रीक मेथोडोलॉजी से, ये उनसे ग्रीक फलसफे से बड़े मुतासिर हुए। पहले आपको पता है कि ग्रीक फिलोसफी का बहुत रूज था एक जमाना, वो भी था, ये भी यानी तकरीबन चौथी सदी ईस्वी की बात है। तो इन्होंने कहा कि हम इनको, यूनानियों को, ग्रीस को अपना दीन पहुंचाते हैं। अब उनमें भी कुछ इस तरह का था कि खुदा आसमान का, एक जमीन का और एक पता नहीं क्या, उनका भी कुछ दो तीन तीन उनके भी कुछ चीज थे। तो इनके अंदर ट्रिनिटी नहीं पहले होती थी। इन्होंने कहा जब इनको बताना है तो हम भी कुछ इस तरह से करके बताएं कि जरा मोल्ड कर लो ना, ताकि ये ईसाइयत इख्तियार कर ले। तो उनको इन्होंने कहा इस तरह से कि एक खुदा है और एक उसका नाउजुबिल्ला बेटा और एक हजरत मरियम। और बाद ये भी कहते हैं कि सेंट पॉल जो था उसने पहले, सबसे पहले ये शुरू किया था, वो एक यहूदी से ईसाई हुआ था, तो उसने ये एक नया ही तरीका स्टार्ट कर लिया। वल्लाहु आलम किस तरह से वो ये हुआ, लेकिन यही किताबों में लिखा हुआ है। अब अल्लाह ताला तो लम यलिद वलम यूलद है, ना उसका ऊपर कुछ है कि ऊपर कोई माँ बाप या वो हूं, ना उसकी औलाद कोई है। और इन्होंने बना दिया कि तीन में तीसरा, वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहुन वाहिद, और नहीं कोई इलाह मगर इलाह एक ही है, तीन नहीं है और तीन में वो थर्ड वन नहीं है, वो तो बस एक है। और फिर इनको बहुत बड़ी एक वार्निंग दे दी गई, एक धमकी समझ ले दे दी गई, अगर बाज नहीं आते ना तुम, अम्मा यकूलुना, अगर वो बाद ना आए इससे जो वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि वो तीन में तीसरा ट्रिनिटी का कहते हैं, लयमस्सन्नल्लज़ीन कफरू मिन्हुम अज़ाबुन अलीम, अलबत्ता जरूर छुएगी ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے کون سا عذاب؟ دردناک عذاب چھوئے گا ان کو. یعنی یہ ان کا کفر ہی ہے نا, لقد کفر کہا گیا ان کا کفر ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بینہ میں بھی فرمایا نا, ان الذین کفروا من اہل کتاب, اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا, سارے اہل کتاب نہیں, جنہوں نے کفر کیا, یعنی جنہوں نے ٹرینیٹی کا کہا یا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, وہ بھی عیسائی تھے جنہوں نے اللہ کو ایک مانا, عیسیٰ علیہ السلام کو اس کا رسول مانا, وہ بھی تھے, لیکن جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے, والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ, وہ تو بدترین ہے مخلوق میں. آپ کہتے ہو کہ یہ کتنے جنت میں جانے کے قابل ہیں اور کتنے یہ اچھے ہیں, ان کو تو جنت میں جانا ہی چاہیے. مجھے تو لگتا ہے ہم کہتے ہیں ہم چاہے جائیں نہ جائیں یہ ضرور چلے جائیں کیونکہ یہ اتنے اچھے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, اولئک ہم شر البریہ, جس نے یہ کفر کیا وہ شر البریہ ہے, ساری مخلوق میں سب سے ورسٹ, اتنی بری ہے یہ چیز. سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اگر یہ کلمہ کسی پہاڑ کے اوپر نازل کر دیا جائے کہ یہ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے تو وہ پہاڑ کرمبل ہو جائے, اتنا وہ ڈر کے مارے خوف کے مارے کہ اتنی بڑی بات منہ سے نکال رہے ہیں. یہ اللہ کو گالی دینا ہے, یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ ہمارے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے, بس ان کے اخلاق اچھے یہ اچھے تو اب کوئی بات نہیں, اگر وہ یہ کہتے بھی رہتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں یہ بہت برا کلمہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی گلتے تھے نا کہ ان تک بات پہنچائی جائے جو اہل کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فلا تعصبنا افسوس کریں ان کے اوپر جو کفر کرتے ہیں. تو اب اس کے بعد ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم بھی اس چیز کی تڑپ رکھیں کہ ہم ان تک پیغام پہنچائیں, کم از کم ان آیات کو ان تک بتا دیں کہ دیکھو یہ ہمارے قرآن میں لکھا ہے. پہلے تو یہ باور ان کو کرایا جائے, یہ ان کو منوایا جائے کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے, اس کی دلائل دیں ان کو, اس کے بعد پھر ان کو یہ قرآن کا یہ آیتیں خاص طور پہ دکھا دیں کہ دیکھو یہ قرآن کہتا ہے جو اللہ کا کلام ہے اور جو کبھی نہیں بدلا ہے. تو یہ انجام ہے شرک کا, شرک معاف نہیں ہونا, اس لیے شرک سے توبہ کرو. اللہ تعالیٰ نے اسی کی دعوت دی اگلی آیت میں, ایسے لوگ جو یہ پڑھ کے پھر سوچیں کہ ہائے ہمارا تو بیڑا غرق ہو ہی گیا, اب ہمارا کیا بن سکتا, اب تو ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا, ہم تو اتنے عرصے سے شرک میں ہی پڑے رہے. ایک بوڑھی عورت کوئی 90s میں تھی, اس کی میں اسلام لے آئی تو اس کی میں بات سن رہی تھی, اللہ اکبر, تو اس نے پتہ ہی کیا کہا, بہت ہی ایک واقعی میں سوچے اس نے دنیا میں یہ بات کی ہے, کئی لوگ آخرت میں یہ بات کہہ رہے ہوں گے. اس نے کہا مسلمان آج تک کہاں تھے, میں 90 ایئر اولڈ ہو گئی ہوں, تم لوگ کہاں تھے آج تک, یعنی میں نے اتنی زندگی شرک میں گزار. تو بہت سارے لوگ قیامت کے دن کہیں گے مسلمانوں تو کہاں تھے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پھر دعوت دی کہ آسا لائیے توبونا اللہ ہی بھائی اختفرونا, کیا بھلا نہیں وہ توبہ کرتے اللہ کی طرف اور بخشش مانگتے, اگر وہ توبہ کر لے وہ اللہ غفور رحیم, تو اللہ کو کیسا پائیں گے, غفور الرحیم, جو پلٹ آئے گا اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ اس کے لیے غفور الرحیم ہے, مگر پلٹنا شرط ہے تم توبہ کرو. تو یہاں پہ توبہ بھی آیا اور استغفار بھی آیا, دونوں میں کیا فرق ہے؟ توبہ عمل ہے اور استغفار قول ہے. عملی طور پہ جب آپ واپس آ جاتے ہیں اپنے عمل کی اصلاح کر لیتے ہیں تو یہ توبہ ہے, اور ساتھ ساتھ منہ سے بھی بول کے کہنا استغفار. یعنی آپ اس کو اس طرح سمجھے, اگزامپل سے دیکھیں, کہیں پہ کسی کا پیر پھسل گیا, کسی گندگی میں پڑ گیا, وہ فوراً اپنا پیر وہاں سے نکالتا ہے اس گند سے, یہ توبہ ہے. اور پھر وہ فوری کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے کہ میں نے گندگی میں اپنا پیر رکھا, اللہ مجھے معاف کر دے میں شرمندہ ہوں, یہ استغفار. سمجھ آئی؟ یعنی اس عمل کو اپنے آپ کو فوراً ہٹا لینا, اس گناہ سے نکل آنا, یہ توبہ ہے. یہ پلٹنا ہے نا, پلٹ گیا انسان, اس سے نکل آیا. اور استغفار کیا ہے؟ بخشش مانگنا, یہ اس کو استغفار کہتے ہیں. کہ اب آپ بول کے کہیں اللہ سے, اور سوچیں اگر پاؤں گندگی میں پڑ گیا اور پھر وہیں رکھے رکھا پاؤں, وہیں دھستا جا رہا ہے دھستا جا رہا ہے, اور اپنے منہ سے ہم کہتے رہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, تو یہ کوئی توبہ نہیں ہے. اس لیے کہ توبہ یہ ہے کہ آپ گناہ سے پہلے باہر آئیں, نکلیں اس میں سے. اللہ اکبر. اور یہ تو اکبر الکبائر ہے, یعنی کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ. इसलिए हमें हम सबको भी ना अच्छी तरह इल्म होना चाहिए कि शिर्क क्या है। शिर्क बहुत बारीक बारीक और बहुत ही उसकी चाल ना, उसके साथ इंसान बहुत आहिस्ता यानी छुपी हुई चाल के साथ इंसान के अंदर आ जाता है। जैसे इसको बताया गया हदीस में कि जैसे एक काली चींटी काली चट्टान पे है और अंधेरी रात हो, तो शिर्क इससे भी ज्यादा खुफिया तरीके से इंसान के अंदर आ जाता है। तो शिर्क से हर हर लिहाज से हर तरफ से बचा दे, हर किस्म के शिर्क से बचा दे, चाहे वो रियाकारी की फॉर्म में है, चाहे वो शिर्क के असगर है, चाहे शिर्क के अकबर है, हर तरह के शिर्क से बचा दे। और लोगों को भी इससे बाज किया जाए कि मत शिर्क करो। आज हमारे मुसलमानों में बहुत सारे लोग हैं जो शिर्क में पड़ गए। अभी ये मैंने खबर देखी थी कि उन्होंने कहा जी सिंध के अंदर तमाम मजारात अब खोल दिए गए, जो बेचारे इतने अरसे से मजार की हाजिरी से जो थे महरूम हुए हुए थे उनके लिए बड़ा था। तो उन्होंने दिखाया कि भी चादरें ले लेके जा रहे हैं, औरतें भी चादरें लिए हैं, आदमियों ने फूलों के और वो पकड़े हुए, इतना हजूम है कि वो इतने दिन से जायरा नहीं गए थे, तो अब किधर से हाजते हैं अपनी मांगी, वो फौरन वहां पे पहुंच गए मेजारों पे लोग। ये तो हमारे हाल। और मजारों पे अक्सरियत अक्सरियत यही धंधा है शिर्क का, इसके सिवा कुछ नहीं। हमारी आपके आगे आपकी अल्लाह के आगे, हम तो इन्हीं से मांग रहे हैं, तो फिर इन्हीं से उम्मीदें हैं, इन्हीं के ऊपर भरोसा है, यही हमारे माई बाप हैं, यही हमारे मुश्किल कुशा हैं, यही हमारे हाजत रवा हैं, यही हमारे सब कुछ है। लोग कहते हैं ये बच्चा भी मुझे दिया है तो फलाने बाबे ने दिया है, फलाने उनके मजार से मिला है। और शिर्क क्या होता है लोगों, शैतान ने आपको सिखाया था कि तुम तो बड़े पक्के मुसलमान हो ना, तुम्हारे लिए तो जन्नत है ही है, तुम्हें नहीं फिक्र करने की जरूरत है, सारी उनको बातें कही जा रही, तो तुम चाहे जो मर्जी करते रहो, तुम्हारा सब कुछ ही जायज है। पर कलमा जो तुमने पढ़ लिया, कलमे की अकल हो तो फिर है ना, कलमे की समझ ही नहीं है। अगर कलमे की समझ हो तो ये कितना बड़ा शिर्क है, इस चीज को समझे, कलमा कितने बड़ी बात है जो इंसान मुंह से निकालता है, उसकी समझ ही नहीं। मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, अल्लाह ताला ने अब फरमाया, साफ फरमा दिया, मसीह कुछ और नहीं है इल्ला रसूल, मगर सिर्फ एक रसूल है बस, वो कोई खुदाई में शामिल नहीं, खुदा के बेटे और तो क्या, उनके पास कोई और ऐसा इख्तियार नहीं है कि जो खुदाई वाला हो, कोई ऐसा स्पेशल कोई और ऐसा उनके पास प्रिविलेज नहीं है जो कि अल्लाह के पास है, कोई अल्लाह ताला की सिफात में से कोई एक भी नहीं है, वो सिर्फ रसूल है, सिर्फ रसूल इल्ला रसूल। देखिए एक ये भी जैसे हम कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह, इसी तरह ये मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल। ठीक है, जब इस तरह से फ्रेज किया जाता है ना किसी जुमले को, तो उसमें पहले नफी कर दी गई, नहीं है मसीह इब्न मरियम, कुछ भी नहीं है इल्ला सिवाय रसूल, पहले सारी चीजों की, ना बेटा कह सकते हैं, ना तीन में तीसरा कह सकते हैं, ना खुदा कह सकते हैं, ना खुदाई वाले, कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ एक रसूल है। अच्छा किसी को अगर आपके ऐसा कह दिया जाए ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो माइंड कर जाते हैं कि वो तो हमारे सब कुछ हैं, वो ही तो हैं सब कुछ, उन्हीं से तो मिलना है, उन्हीं ने तो देना है, तो फिर उनके बारे में क्यों कह रहे हो ऐसे, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कितनी दफा अपनी जिंदगी में कि मैं सिर्फ एक अब्द हूं और रसूल हूं, अब्द हूं और रसूल हूं, अब्द हूं और रसूल, और अल्लाह ताला ने भी अब्द हूं और रसूल हूं ही कहा उनको कि उसके अब्द है और उसके रसूल। तो ईसा इब्ने मरियम यानी वो अल्लाह ताला ने बता दिया, वो पैगंबर थे, पैगाम लाने वाले थे, एलची थे, मैसेंजर थे अल्लाह के, मैसेज पहुंचाने वाले थे अल्लाह के। और जैसे बहुत सारे मैसेंजर आए, मैसेज लेकर आए ना, वो बहुत सारे रसूल आए और वो वापस भी चले गए, इसी तरह वो भी दुनिया में आए और उनको भी वापस चले जाना है। रसूल उनसे पहले रसूल आए हैं, जैसे वो आए इसी तरह ये रसूल है, कोई खास नहीं है कोई बात की, हाँ कोई स्पेशलिटी इनके अंदर हो जो दूसरे रसूलों के अंदर नहीं थी, जो कोई इनकी खास एक बात है कि इनको कोई खुदाई का मर्तबे मिल गए। वह उम्मो सिद्दीका और उनकी माँ जो थी वो सच्ची औरत है, इसमें यहूदियों का रद्द है जो कहते थे अल्लाह ताला माफ करे कि हजरत मरियम ने कोई बुराई का काम किया है जिससे ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, तो जो उन्होंने इल्जाम लगाया वो झूठे हैं, इसलिए कि उनकी माँ सच्ची है, जो उन्होंने बात कही है वो सच्ची है। और वैसे भी सूरह तहरीम में आगे आएगा कि इनकी वालदा जो थी, इनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो अल्लाह के कलिमात की तस्दीक करने वाली थी, तो वो सच्ची औरत थी। और सच्चा और कौन होता है जो अपने कौल और फेल में एक जैसा हो, वो सच्चा है। तो सच्चाई की भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक तारीफ है उनकी कि वो सच्ची है, और सच्चाई कितनी बड़ी एक सिफत है इंसान की कि अल्लाह ताला ने उसको मेंशन किया है। तो ये कितने इजी वर्ड्स में समझा दिया गया कि जिसकी माँ है, जिसकी भी माँ हो वो खुदा नहीं हो सकता, इसलिए कि जो किसी माँ से पैदा हुआ हुआ है वो खुदा कैसे हो सकता है ना। सोचिए आप कितनी सिंपल बात समझाई गई कि माँ रखने वाला तो उसकी तो माँ का दर्जा उससे ऊपर हो गया, वो क्या खुदा होगा फिर। माँ का दर्जा जाहिर है बच्चे से ऊपर होता है, माँ बच्चे से ज्यादा हक रखती है, बच्चा नीचे होता है, माँ ऊपर होती है, तो ये कैसे खुदा होगा कि मेरी माँ। और जो पैदा होता है, जिसकी माँ होती है, जो जना जाता है उसको मौत भी है फिर, तो फिर जो जिसको मौत आ गई वो कैसा खुदा होगा। और फिर और एक सिंपल, देखिए इतनी सिंपल बातों से समझाया गया कि इंसान कोई भी बिल्कुल कम पढ़ा लिखा भी है वो भी बात समझ सकता है। कहना या कुलाने तो आम, इतनी बात कह के ना तीन अल्फाज में सारी कहानी खत्म कर दी कि वो तो खुदा हो ही नहीं सकते। कहना वो दोनों एक, अगर सिर्फ काना होता तो सिर्फ मरियम की तरफ बात हो सकती थी या ईसा अलैहिस्सलाम। कहना दो है, ड्यूल के लिए आया, वो दोनों थे, या कुलान वो दोनों खाते थे। अब ताम खाना, अब खाना खाने से क्या ताल्लुक इस बात का कि वो खुदा नहीं थे। देखिए जो खाना खाना है ना, ये इटसेल्फ इंसान को मोहताज बना देता है अल्लाह ताला पाक के खाने पीने से, इसलिए कि खाना इंसान की जरूरत है, उसकी मजबूरी है, वो खाने के बगैर सरवाइव ही नहीं कर सकता। उसको 2 दिन खाना ना दो तो वो भूख से ही वो तड़पने लग जाएगा, गिर जाएगा, और 4 दिन खाना ना खाए जिंदा ही नहीं रहेगा। तो खाना एक एहतियाज है, और एहतियाज रखने वाला, मोहताजी रखने वाला खुदा कैसे हो सकता है। और फिर सिर्फ खाना में, खाना खाना नहीं, जो खाना खाने वाला होता है ना वो बहुत सारी चीजों में मोहताज हो जाता है। वो इस चीज में भी मोहताज है कि कोई दाने को उगा दे जमीन से, वो इस चीज में भी मोहताज है कि कोई काट दे उसको, कोई बाजार में ले आए उसको, फिर कोई लेकर आए उसको, फिर कोई पकाए उसको, फिर वो खाएगा। और फिर देखें आप जो खाना खाता है वो इस चीज का भी मोहताज है कि खाना हजम हो जाए, अगर हजम ना हो तो परेशानी, हजम हो जाए तो भी फुजला बनेगा, वेस्ट बनेगा, तो भी एक परेशानी है कि वेस्ट बन गया तो इसको जिस्म से निकाल लूं, अगर वो जिस्म से ना निकले तो तब भी परेशानी है, अगर जिस्म से ज्यादा निकलने लगे तो भी परेशानी है। तो अंदाजा करें ये इंसान कैसे खुदा हो सकता है। और ये तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं तो ऐसे लोगों को देख चुकी हूँ, अल्लाह मुझे माफ कर दे कि इस कदर, अल्लाह मुझे माफ करे, मैं क्या कहूँ, अल्लाह की मखलूक है सब, मगर उनकी शक्लों पे भी यकीन जाने की एक लानत पड़ी हुई है जिनके आगे जा जाके ये लोग, और इनसे उन्होंने चोगे पहने हुए, उनके पैरों की तस्वीरें लगाई हैं, मैंने खुद देखी हैं, और उनकी हर जगह तस्वीरें लगाई हैं, उनकी शक्लों पे भी लानत है। वो खुद अपनी पूजा करवाते हैं, और वो कुछ एक मजहब है जो उनकी पूजा करते हैं। उन्होंने अब उन्होंने कहा बुद्ध भी छोड़ो, बुद्ध तो एक तरफ मंदिर में पड़े हैं, जो इन्हीं को बना लेते हैं, वो उनके आगे सज्दे भी कर रहे हैं, वो उनको पता नहीं पूजते हैं, बाकायदा पूजते हैं उन इंसानों को, और इनके जैसे चलने फिरने वाले इंसान है, फिर वो मर भी जाते हैं। तो इनको इतनी समझ नहीं आती कि जो मर गया है वो कैसे खुदा हो सकता है, जो हमारी तरह खाने पीने का मोहताज है ये कैसे खुदा हो सकता है, जो मेडिसिन का मोहताज है ये कैसे खुदा हो सकता है, जो बीमार पड़ जाता है ये कैसे खुदा हो सकता है, जो बूढ़ा हो रहा है ये कैसे खुदा हो सकता है। अल्लाह हू अकबर, कि इंसान की मत कैसे मारी जाती है, ये शिर्क इंसान को किस जगह पहुंचा देता है। कभी कोई हाथी नुमा चीजें उनको सज्दे हो रहे हैं, कभी ये इंसान अपने आप को खुद जलील कर देता है। गिरा देता है। अल्लाह ने इसको सब मखलूकात से अशरफ बनाया और इसको कहा सिर्फ मुझे सजदा कर और किसी को सजदा नहीं करना, किसी और के आगे तुझे झुकने की जरूरत नहीं। और इंसान कभी इधर झुक रहा है, कभी उधर झुक रहा है, कभी इसको सजदे कर रहा है, तो अपने आप को जलील कर रहा है ना। अल्लाह ने तो इसको इज्जत दी कि तू सबसे बड़े को सिर्फ सजदा करेगा, तुझे नहीं जरूरत है कि तू गुलामी कर हारे, तू इनके आगे माथे टेक, मैं तुझे सबसे आजाद करता हूं। इसमें तो इंसान का शर्फ था, उसकी इज्जत थी कि वो एक अल्लाह को सजदा करने वाला जो रब्बुल आलमीन है, और इसने अपने आप को क्या करके रख दिया, असफल असाफिली, नीचों से भी नीचा, कि जानवर को भी पता है कि मेरा रब अल्लाह है, मुझे खिलाने वाला अल्लाह है, मुझे पिलाने वाला अल्लाह है, वो भी उसकी तस्बीह करता है, इंसान तुझे नहीं अकल आती। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला ने फरमाया उन्ज़ुर कैफ़ नुबय्यिनु लहुम अल-आयात, देखो तो सही हम इनको कैसे आयतें बयान करते हैं, कैसे अल्लाह ने खोल खोल के तो सारी चीजें बयान करती, कितनी सिंपल बात है, ये बात क्यों नहीं अकल में पड़ती, तुम मंजूर अन्ना यू फकून, फिर देखो तो सही ये कहां से फेरे जा रहे हैं, ये कहां से इनके भटक जाते हैं, इनको समझ क्यों नहीं आती, किधर से फिराए जाते हैं, यानी बात पता भी चल गई फिर भी ढीठ की तरह वही काम करते चले जाए। तो ये सब शिर्क करने वालों के लिए, जो किसी को भी खुदा बनाए गए, चाहे वो हस्तियां जो कि दुनिया से चली गई हैं, वो भी समझे कि वो खाना खाते थे कि नहीं खाते थे, उनकी कोई मां थी कि नहीं थी, वो जैसे भी खाते थे या उनकी माए जैसी भी थी, मगर वो इंसान थे। और इसी तरह उनके पास उनकी भी वही हाजतें थी जो बाकी इंसानों की, मगर हमारी मुश्किलात हैं, हमारी परेशानियां हैं, कभी किसी तरह की परेशानी, कभी किसी तरह, उनकी भी ये परेशानियां हैं। जब कोई खाना खाने वाले होता है तो उसको जाहिर है कुछ कुछ कमाना भी पड़ता है ताकि वो खाए, कहीं से कुछ लाना पड़ता है, कुछ इंतजाम करना पड़ता है, तो वो कैसा खुदा हुआ जो खुद ही मोहताज है, वो किसी की मोहताजी कैसे दूर कर सकता है, वो किसी को कैसे खिला सकता है जो खुद खाने का मोहताज है। तो इस ये ना सिंपल पैराए में शिर्क को कितनी खूबसूरत तरीके से बताया गया कि कितना बूढ़ा है ये, कितना ये बेकार फलसफा है जिसकी कोई जड़ नहीं। और अक्सरियत आप देखेंगे जो शिर्क करते हैं, अगर वो किसी स्टोन को भी पूजा कर रहे हैं, किसी आइडल को भी पूजा कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी क्या है कि ये कोई हस्ती थी, ये कोई पुराने थे हमारे, फलां थे, वो फौत हो गए अब दूर, उनके पीछे भी जाके कोई ना कोई इंसान ही होता है। तो इन सब को ये समझना चाहिए, ये आयत सबके लिए फिट बैठती है। और जो ईसाई इतने दुनिया में इस वक्त नंबर वन पे जो अकीदा है, वो ईसाइयों का, ये जो मजहब है वो ईसाइयों का है, जो सबसे ज्यादा है दुनिया के अंदर आज, ये इस अपने बूढ़े अकीदे को लेकर, बेसलेस बात को लेकर और दुनिया में फिर रहे हैं और लोग मान रहे हैं इनकी बात। वो जो मान रहे हैं वो भी नहीं अकल करते, उनको भी समझ नहीं है, और लोग इसलिए उनकी बात मान लेते हैं कि जो हक वाले हैं ना, जो हक जिनका काम था कि हक फैलाएं, वो सो गए हैं, वो सोए हुए हैं, मीठी नींद सोए हैं, उनको दुनिया की लग्जरीज और इन चीजों ने सुला दिया, दुनिया कमाने ने और दुनिया में मगन होने ने सुला के रख दिया। और ये लोग दरवाजों पे फिर रहे हैं, ये लोग मेहनतें कर रहे हैं, ये उस बेसलेस अकीदे को लेके फिरने लगे हैं जिसकी कोई बेस ही नहीं है, जिसको एक मिनट के अंदर खत्म हो जाता है, उसको ले लेके फिर रहे हैं, लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। और कोई मुसलमान ऐसे हैं जो इतने ज्यादा इससे मुतासिर हुए, जिनका जो नाम के मुसलमान थे, जाहिर है अपना दीन मजहब नहीं पता था, अगर पता होता तो ऐसा ना करते, वो इनकी बातों में आ जाते हैं और फिर ये उनकी स्टोरीज लेके घूमते हैं कि देखो हम, देखा हम किस तरह ये भी कन्वर्ट होके हमारे उसमें आ गया क्रिश्चियनिटी। अभी पिछले दिनों किसी ने बताया कि उनकी मस्जिद के जितने लोग हैं उनके घरों में एक इनकी तरफ से बुक आई जिसके अंदर ऐसे मुसलमानों की कहानियां जो कि क्रिश्चियन हुए थे उनकी कहानियां लिखी हैं, और उन्होंने लिखा कि हम कितने कैसे कनेक्ट हुए हम गॉड के साथ। तो इनका अकीदा तो बिल्कुल फजूल है, उसको ये इतना प्रमोट कर रहे हैं, हमारे पास तो हक है, हम किधर हैं और हम क्यों नहीं बताते। देखिए खुद सोचिए कि ऐसे कोई मुसलमान होंगे ना जिनको दीन की नहीं समझ होगी, जिन तो को दीन अपना ही नहीं वो जानते होंगे, तभी वो फंस गए ना इनकी बातों में। अगर अपने दीन का सही इल्म होता तो ऐसा ना होता कभी। हमें जागना है अपनी नस्लों के लिए, आइंदा आने वाले लोगों के लिए और अपने इर्द गिर्द वालों के लिए, वरना हम पर इल्जाम आएगा जरूर। हमने अपना काम क्यों नहीं किया, अगर हमें फुर्सत कहाँ है? कुल अताबुदूना मिन दुनिल्लाहि मा ला यम्लिकु लकुम दरअ वला नफअ, क्या तुम इबादत करते हो उनकी अल्लाह के सिवा जो नहीं मालिक तुम्हारे किसी नफा के और ना नुकसान के। अगर सिर्फ इतनी बात पूछी जाए ना, अगर सिर्फ क्रिश्चियंस को ले लिया जाए, खुद ही ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली चढ़ा दी जाए, जो अपनी सूली चढ़ने से खुद को ना महफूज रख सकते, हमारा तो अकीदा ये नहीं है, हमारा तो अकीदा है कि अल्लाह ने हमको उठा लिया, लेकिन तुम तो ये कहते हो और इसी वजह से तुमने हर जगह क्रॉस लगाया हुआ, चर्चेज में लगाया हुआ हर जगह, क्योंकि तुम्हारा अकीदा है कि वो सूली चढ़े थे, जो अपना नुकसान उससे अपने आप को नहीं बचा सके। हमारे नबी ने तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने उनको फरमा दिया कि ए नबी आप खुद कहें, कुल इन्नी ला अमली को लकुम दर्रम वला नफा, मैं नहीं मालिक हूँ तुम्हारे जरर और नफे का, मैं तुम्हारे नफे नुकसान का कोई मालिक नहीं हूँ। तो हम उनको कोई नहीं मानते कि वो खुदा है, लेकिन इन्होंने उनको खुदा माना है, तो वो कौन सा खुदा है जो अपने नफे नुकसान का भी मालिक नहीं है? वो तुम्हारा क्या तुम्हें नफा नुकसान से बचाएगा या तुम्हें नफा पहुंचाएगा, जो खुद भी नहीं अपने लिए कर सकता? खुद सोचने की बात है ना। तो जिसके पास कोई इख्तियार नहीं है ना, जो बचा नहीं सकता खुद को भी, या खुद को नफे नुकसान की उसमें से जाने से निकाल नहीं सकता, वो दूसरों तक कैसे ये चीजें पहुंचा सकता है? तो कुल अताबुदुना मिन दूनिल्ला, चाहे वो ईसा अलैहि सलाम है मिन दूनिल्ला में अल्लाह के सिवा जिनकी भी पूजा की जाती है, या वो कोई भी भगवान राम फलां ये वो जो भी नाम लिख लिया अपना, जिसकी भी मिन दूनिल्ला पूजा की जाती है, वो कहाँ है? वो उन्होंने अपने आप को मौत से बचा लिया फिर, या वो मर गए हैं कहीं, या और भी जिनको समझा जाता है ये मुझे नुकसान से बचाएंगे। कोई वहां पे अक्सर ऐसे होता है कि वो जो उर्स होता है मीलाद पे, उस दिन दूध नहीं शहर में आया करता था, जब हम वहां पे बैक होम होते थे तो वहां पे दूध नहीं, के दूध वाला क्या कहता था कि आज तो मैं जी दरबार पे मैंने जाना है, वहां पे सारा दूध दे, क्यों मेरा ये जो भैंसे जो है मेरी और ज्यादा हेल्दी होंगी और मेरा काम बढ़ेगा इस वजह से। अल्लाह के बंदो, वो तुम्हें नफा नुकसान से कैसे बचा सकते हैं? वो तुम्हारा नफा कैसे कर सकते हैं? वो खुद जाके जमीन में पड़ गए, वो तो खुद इस जिंदगी के अंदर कितने मसाइब से गुजरे होंगे, मसाइल से गुजरे होंगे, तो अपने लिए नहीं कुछ कर सके। मत मारी गई ना फिर लोगों की, क्यों मत मारी जाती है? शैतान देखो कैसे दिमाग के अंदर डालता है, वो कहता है बस एक दो बार ये शेयर कर ले, उसके बाद तो इसके लिए जहन्नुम ही जहन्नुम है, फिर तो कोई मसला ही नहीं, फिर जितनी मर्जी और अच्छे अच्छे काम करता रहे, यतीम खाने बनवाए या अस्पताल बनवाए या जो मर्जी करता रहे, बस शेयर के एक दफा इससे करा दो, इसने अपना माथा टेक दिया कहीं और, या कहीं और किसी को नफा नुकसान का मालिक समझ लिया, वो दस काम बन गया शैतान का। असल में पुराने वक्तों के अंदर लोग जिससे समझते थे ना इससे मुझे नफा होगा, या जिससे डरते थे कि इससे मुझे नुकसान होगा, उसकी पूजा शुरू कर दी। इसीलिए आप देखते हैं हिंदुओं में कितने खुदा उन्होंने बनाए हैं, किसी से नफा है, कोई लक्ष्मी देवी है तो कोई सांप को पूज रहा है तो कोई किसी चीज को पूज रहा है, क्योंकि वो जिससे डर जाते थे उसकी पूजा शुरू कर देते थे। अल्लाह ताला ने देखो इंसान को उठा के कितना बुलंद किया, ये कहा नहीं ये सब तो तुमसे नीचे हैं, तुम सबसे ऊपर हो, तुम अशरफ हो, तुम मेरे आगे बढ़ चुको, और तुम्हें क्या हो गया? कुल अताबुदूना मिन दूनिल्लाह में हर हस्ती आ जाती जिसको लोग इबादत करते हैं, या जिसको भी लोग समझते हैं कि ये मेरा कुछ नुकसान कर सकता है, या ये इससे डर जाओ, इसी में नहीं, यहाँ पे नुकसान ना दे दें, आए ये फलाना उसको राजी कर लो क्योंकि पता नहीं हमारे दुश्मन ना हो जाए, आए फलाने को देखो नाराज ना करना, ये तो फिर बड़े बहुत बड़े लोग हैं, फिर ये तो हमारे पीछे पड़ रहे, तो ये कोई मालिक नहीं किसी के नफा नुकसान के। अलीम, और अल्लाह है वो सुनने वाला और जानने वाला है, जो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है उसको छोड़ के तुम जाके उनको पुकारते, जो कुछ भी नहीं सुन रहे ना उनको कुछ पता है। अब बुद्ध के आगे खड़ा हुआ अपनी सारी रुदात बोल रहा है, रो रहा है, उसके आगे मिनते कर रहा है, उसको क्या पता उसके पीछे जो हस्ती है अगर उसको पुकार रहा है, कहते हैं कि नहीं ये हमने सिर्फ इसके लिए रखे हैं कि ये हमारे सामने से एक इमेज के तौर पे है, असल तो पीछे हम हस्ती को पुकार रहे हैं। वो हस्ती भी नहीं जानती तुम्हारा क्या दुखड़ा है और तुम्हारी क्या जरूरत है। अल्लाह को तुम्हारी हर जरूरत पता है और वो तुम्हारी हर बात सुन रहा है। तुम मुंह से ना भी बोलो, तुम अपने दिल में भी बोलो, मैं हैरान हूँ ये लोग बेचारे चल चल के सीढ़ियां चल चल के जा रहे थे सिंध के अंदर वो किसी मजार के ऊपर, वो खुदा के बंदो तुम घर बैठ के अल्लाह को पुकार लेते ना तो तुम्हारी हाजत पूरी हो। तुम जा रहे हो अपनी पता नहीं कितने जतन किए होंगे वहां पहुंचे हो, किराया भी लगाया होगा, कुछ किया होगा, फिर वो फूल खरीदे होंगे, फिर चादरें खरीदी होंगी, फिर चढ़ चढ़ रहे हो ऊपर जाने के लिए, तो उसको क्यों नहीं पुकारते जो समी और अलीम है। अल्लाह अकबर, देखो कितनी प्यारी हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे इब्ने अब्बास के साथ, इब्ने अब्बास छोटे लड़के थे, छोटे बच्चे, तो अपने साथ सवारी पे सवार किया। जैसे इंसान बच्चे के साथ बातें करता है ना, उसको सिखाता है, तो उस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा रहे हैं इब्ने अब्बास को, सिखा रहे हैं। देखो सफर सफर में भी बातें करते करते जो उनको कितनी प्यारी बात समझा दी, काफी लंबी हदीस है, मगर मैं आपको सिर्फ उसका जो एक बीच में जिस्ट है वो बताना चाहूंगी, और आप भी बच्चों से ये बात करें। मैंने भी अपने बच्चे से यही बात की, फिर उसके बाद कि पूरा सीधा तौहीद ही सिखा दिया उसको, कि फरमाया है बच्चे, ऐ मेरे बच्चे तू हर वक्त अल्लाह को याद रख तो तू हर मामले में अल्लाह को अपने साथ पाएगा। तू अल्लाह की हिफाजत कर, यानी अल्लाह को याद रख तो वो तेरी हिफाजत करेगा, यानी वो फिर तुझे याद रखेगा। ऐ बच्चे अगर सारी दुनिया तेरा फायदा करना चाहे, सब इकट्ठे हो जाएं, सारे अपनी कुव्वतें मिला लें और वो तेरा फायदा करना चाहे तो नहीं कर सकते जब तक अल्लाह ना चाहे, और सारी दुनिया मिलके तेरा कोई नुकसान करना चाहे तो नहीं कर सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। ये है वो रब, ये है वो ताकत जिसके पास हर ताकत है नफा और नुकसान की, वो हस्ती है। फिर तुम किधर टकरे मार रहे हो, ये देखिए बात कितनी प्यारी एक बच्चे को समझा दी, तो फिर किसी का खौफ ही नहीं रहेगा और किसी को राजी करने की इतनी परेशानी नहीं रहेगी कि हाँ ये ना नाराज हो जाएगा ना, फिर तो एक अल्लाह को इंसान राजी करेगा और एक अल्लाह से ही खौफ भी खाएगा कि वो ना नाराज हो। तो ईसा अलैहि सलाम ने भी बता दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि आप कह दे क्या तुम ऐसों की इबादत करते। तो नबी के बारे में ये अकीदा रखना कि वो हमारे किसी नफा नुकसान के मालिक है, या कोई औलिया अल्लाह के बारे में ऐसा अकीदा रखना, ये भी एक शिर्क है और ये भी नहीं करना।